पृष्ठ 107 रचना शिल्प। प्रत्येक रचनाकार अपने ढंग से अपनी अनुभूति को सजाता संवारता है। कला की सृष्टि और प्रेरणा दोनों में अनुभूति और लक्ष्य का स्थान ही सर्वोपरि है। अनुभूति को अभिव्यक्त करना ही कलाकार का लक्ष्य होता है। इसके लिए वह कुछ ऐसे माध्यमों, विधानों और तंत्रों के अन्वेषण में लगा रहता है जो एक ओर नए भी हों, मौलिक भी हों और दूसरी ओर उनमें इतनी क्षमता हो कि वे कहानी कला के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित कर सकें। ध्यान देने की बात यह है कि कहानीकार के रचना शिल्प में मात्र उसका शैली पक्ष ही अंतर्भुक्त नहीं है, वरन उसकी अनुभूति भी उतना ही महत्व रखती है। मान लीजिए किसी रचनाकार को अकाल पीड़ित समाज की अनुभूति को चित्रात्मक अभिव्यक्ति देनी है, तो उसके लिए वह जो कदम उठाएगा वे ये हो सकते हैं। पहले वह अपनी संवेदना के अभिव्यंजन के लिए एक पीठिका तैयार करेगा। इस तैयारी में कथा वस्तु की निर्मित अपेक्षित होती है। तदुपरांत दूसरे सोपान पर वह अपनी मनोगत भावनाओं को आधार देने के लिए कुछ चरित्रों की अवतारणा करेगा। तीसरे चरित्रों को यथास्थान बिठाने और उनके संयोजन में वह जो भी व्यंजित करेगा वह उसकी शैली होगी। अपने मनोभावों को गाढ़ा और सांद्र बनाने के लिए वह एक परिवेश चुनेगा। उसका यह सारा चुनाव और बंधान ही उसके रचना शिल्प का निर्माण करता है। इस प्रकार रचना शिल्प में कहानीकार द्वारा गृहीत कथानक, चरित्र, परिवेश और शैली सभी का समाहार होता है। कहानी की शिल्प विधि में लक्ष्य और अनुभूति सबसे मुख्य तत्व हैं। इन्हीं के प्रकाश से कहानी के विधान में कथा वस्तु की योजना, चरित्र की अवतारणा और शैली का निर्माण होता है। एक कथानक। राकेश की कहानियों के संदर्भ में यदि उनके रचना शिल्प का अध्ययन करें तो उनका कहानी साहित्य अनेक विशेषताओं के साथ सामने आता है। उसमें नई कहानी की वह समस्त पद्धति और रचना प्रक्रिया शामिल हैं जो स्वातंत्र्योत्तर काल में विकसित हुई हैं। नोट एक, डॉ. लक्ष्मी नारायण लाल, हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास, पृष्ठ 4। कहानियों के रचना शिल्प के विवेचन में पृष्ठ 108। पहली बात जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है वह है कथानक का ह्रास। कथानक का ह्रास कई रूपों में हुआ है। फलतः कभी तो कहानीकार मात्र व्यंजना के माध्यम से पूरी कहानी कहता दिखाई देता है, तो कभी कतिपय आवश्यक कथा सूत्रों को वहां बिना संजोयित किए ही। आज कहानीकार अपनी कहानी को प्रारंभ ही वहां से करता है जहां पहले वह समाप्त होती थी। कथानक के सूत्र कई बार चरम सीमा पर पहुंचकर स्पष्ट होते हैं और कभी विचारोत्तेजक प्रलाप या चिंतनशील सूत्रों को लेकर भी कथानक के ह्रास की प्रवृत्ति लक्षित होती है। एक कथानक के प्रति यह परिवर्तित दृष्टि राकेश की कहानियों से भी मिलती है। इस दृष्टि से यदि राकेश की कहानियों की समीक्षा करें तो निम्नांकित तथ्य सामने आते हैं। एक, राकेश की कतिपय कहानियां ऐसी हैं जहां मात्र व्यंजना या सांकेतिकता का आश्रय लेकर पूरी कहानी कह दी गई है। ऐसी कहानियों में कथानक नहीं है, जो है सो व्यंजना का कौशल है। जख्म और सोया हुआ शहर ऐसी ही कहानियां हैं। दो, कथानक के नाम पर आवश्यक कथा सूत्रों का चयन करके बिना संयोजन के ही अपने पात्रों के मन का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति भी राकेश में मिलती है। ऐसी कहानियों में आए विविध कथा सूत्र किसी ठोस कथानक के अभाव में भी रचना को प्रभावी बना देते हैं। राकेश की कई एक अकेले, जीनियस और बस स्टैंड की एक रात और ग्लास टैंक आदि कहानियां इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। तीन, राकेश की कुछ एक कहानियों के कथानक ऐसे हैं कि कहानी वहां से प्रारंभ होती है जहां पहले समाप्त होती थी। यह प्रवृत्ति आज की कहानियों में बड़ी सूक्ष्मता से चित्रित की जा रही है। आज की कहानी जहाँ लाकर छोड़ती है वहाँ कुछ अस्पष्ट संकेत और प्रभावी व्यंजनाएं रहती हैं जिनके सहारे पाठक की कल्पना को अपना निष्कर्ष खुद पाना होता है। कथानक के बिना लिखी गई ऐसी कहानियों में जटिलता का आ जाना स्वाभाविक है। राकेश ने भी ऐसी कहानियां लिखी हैं, उदाहरणार्थ सेफ्टी पिन और जख्म आदि। 4. राकेश की कुछ कहानियों में कथानक के सूत्र चरम सीमा पर जाकर स्पष्ट होते हैं। ऐसी कहानियों में प्रारंभ में कोई कथानक स्पष्ट नहीं होता है और वह विश्रृंखलित ढंग से चलने लगती है, किंतु अंत तक पहुंचते पहुंचते सारे रहस्य उद्घाटित होने लगते हैं। नोट 1. डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, द्वितीय महायुद्धोत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 167। ऐसी कहानियों की संख्या न केवल राकेश के यहाँ वरन सभी नए कहानीकारों के यहाँ उपलब्ध हैं। राकेश की मंदी, पांचवें माले का फ्लैट, सौदा, सीमाएं, खाली, जानवर और जानवर, हक हलाल और ऐसी ही कुछ अन्य कहानियां इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। 5. राकेश जिस पीढ़ी के कथाकार हैं उसमें वे सर्वाधिक संतुलित, परिष्कृत और आधुनिक बोध के समीप हैं। उनकी लगभग 50% कहानियां ऐसी हैं जहां वे कथा तत्व की दृष्टि से प्रेमचंद की परंपरा में खड़े दिखाई देते हैं। ऐसी अनवित्य युक्त कथानक वाली कहानियों में मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता, उसकी रोटी, गुनाह बेलज्जत, सुहागिने, एक और जिंदगी, अपरिचित और आर्द्रा व सौदा आदि कितनी ही कहानियां हैं। राकेश की कहानियों के कथानक सामान्यतः मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। अपवाद स्वरूप कुछ कहानियां ऐसी अवश्य हैं जो उच्च वर्ग से संबंधित हैं। यों कहानियों में परिवार, महानगर बोध, निम्न मध्य वर्ग, मजदूर वर्ग, शिक्षित वर्ग और ग्राम्य वर्ग आदि सभी से संबंधित कथानकों को स्थान प्राप्त है। वस्तुतः कथानक प्रधान कहानियों में कथा तत्व स्पष्ट, सपाट, सहज और स्वाभाविक गति से विकसित होता गया है। यह बात अलग है कि ऐसी कहानियां संख्या में कम और अपने शिल्प के कारण कथा की अपेक्षा चरित्र पर जोर देती दिखाई देती हैं। कारण यही है कि आज कहानी कथानक को पारंपरिक अर्थ ग्रहण नहीं करती है। अतः राकेश की कहानियों में कथानक संपूर्ण कहानी के अंतर में व्याप्त वह सूत्र है जो कहानी के विविध प्रसंगों में संबंध जोड़ता है। ज्यों ही कहानी समाप्त होती है त्यों ही वह संबंध सूत्र पाठक के मस्तिष्क में कहानी का एक बाहरी खाका उपस्थित कर देता है। बस यही सब कुछ है, चाहे इसे कथानक कह लीजिए और चाहे कथा सूत्र। अतः इस दृष्टि से देखें तो राकेश की कहानियों में कथानकगत सूक्ष्मता व तदगत सार्थकता ही उपलब्ध होती है। एक वाक्य में कहानियों में आए संकेत गर्मी कथानक या सूक्ष्म संकेत सूत्रों में वैचारिकता और अनुभूति की गहनता इस कदर अनुस्यूत रहती है कि उससे कथा तत्व का अलग छांट लेना संभव नहीं दिखता है। कथानक चाहे कतिपय सूत्रों के साथ आगे बढ़ा हो, चाहे वह व्यंजित हो, आज पाठक को उसकी अपेक्षा भी नहीं रही है। साथ ही यह भी निर्विवाद है कि प्रेमचंदीय कथानकों के अभाव में भी ये कहानियां पूरी तरह रोचक, पाठक को आद्यंत बांधे रखने और कौतूहल जगाने में समर्थ एवं सफल हैं। प्रवाहशीलता, गति, पृष्ठ 110, प्रभावोत्पादकता, आकर्षण, वैचारिकता और मौलिकता राकेश की कहानियों की कथानक गत विशेषताएं हैं। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां से राकेश ने कथानक न उठाए हों। वे तो मानते भी यही थे कि हर पल, हर रोज हमारे आसपास कथानक या संदर्भ आते रहते हैं जो हमें कहानी लेखन की प्रेरणा देते हैं। यही कारण है कि समूचा मध्य वर्ग उसकी मन स्थिति, उसकी स्थिति, क्रियाकलाप और उससे संपृक्त परिवेश राकेश की कहानियों में समाविष्ट है। चरित्र। चरित्र के संबंध से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज कहानी काल्पनिक पात्रों को छोड़ चुकी है। वे पात्र आज कहानियों में नहीं दिखाई देते हैं जो लेखक के हाथ की कठपुतली होते थे और कहानीकार जिन्हें मात्र अपने विचारों के वाहक बनाकर प्रस्तुत करते थे। ठीक भी है, आज ऐसे पात्रों की अयथार्थता मूल्यहीन प्रमाणित हो चुकी है। समकालीन कहानीकार अपने पात्रों का चयन अपने आसपास के परिवेश से करते हैं। वस्तुतः प्रेमचंदोत्तर युग में न केवल कथानक के क्षेत्र ही में ही परिवर्तन हुआ, अपितु चरित्रांकन के क्षेत्र में भी नई पद्धतियों और प्रणालियों का विकास हुआ। व्यक्ति के अंतर्मन में प्रवेश करके रचनाकारों ने उसके भीतर को प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया। इस कार्य में मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण के सिद्धांतों ने तो उसकी सहायता की ही, बदलते परिप्रेक्ष्य और नवविकसित जीवन मूल्यों ने भी उसे प्रभावित किया। परिणामतः यथार्थ चरित्र सामने आए, उनकी चारित्रिक संगतियों और विसंगतियों को ईमानदारी के साथ अभिव्यक्ति मिली और तो और जीवन संग्राम में मिली जय पराजय, आशा निराशा, ऊब उदासी और नगरीकरण व औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप बढ़ते हुए अकेलेपन, आत्मनिर्वासन, उलझन, ऊब, त्रासद स्थितियों तक का अभिव्यंजन प्रभावी शैली में किया जाने लगा। आज जबकि व्यक्ति सामाजिक स्तर पर संकट से घिरा है, पारिवारिक स्तर पर टूटा हुआ है और निजी स्तर पर अपने से ही ऊबा हुआ व आत्मनिर्वासित अनुभव करता है, तो इस प्रभाव से युक्त होकर रचनाकार कैसे और किस सीमा तक अलग रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए वह एक कॉन्शियस आर्टिस्ट की तरह परिवेश में नित्य प्रति बदलते, बनते, बिगड़ते मानव संबंधों, मानव मूल्यों और मानव स्वभाव को गहराई से परखता हुआ अपने साहित्य में स्थान देता है। इस दिशा में कविता उतना बड़ा काम नहीं कर रही जितना काम कथा साहित्य कर रहा है। मोहन राकेश परिवेश से कटकर न तो कभी जिए और न ही कुछ लिख सके। उनकी कथाकृतियां निश्चय ही उनके परिवेश को प्रस्तुत करने वाले अनमोल संदर्भ ग्रंथ हैं। नए कहानीकारों में मानव को पूरी तरह समझने और उसको पृष्ठ 111 समग्रता में व्यक्त करने की क्षमता जिन कहानीकारों में रही है, उनमें राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर को विशेष स्थान प्राप्त है। राकेश ने जीवन को जिया था, उसकी समस्त कटु तिक्त स्थितियों को भोगा था, बल्कि कहूं कि झेला था। अतः उनके पात्र भी उस सब से अप्रभावित नहीं हैं। नाटक, कहानी और उपन्यास सभी विधाओं में उनकी चरित्र सृष्टि आज के परिवेश में टूटते, खटते, लुटते, पिटते और थके हारे पात्रों के व्यक्तित्व से अनुप्राणित है। कहानी में सफल चरित्र चित्रण का अर्थ ही यह है कि उन्हें उनकी अच्छाइयों, बुराइयों के साथ एक सजीवन और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया जाए। राकेश की दृष्टि में कहानी की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि कहानीकार चरित्रों और उनकी परिस्थितियों के विधान में कहाँ तक निसंग, तटस्थ और अयुक्त रह पाता है। एक, उनके इस कथन के परिप्रेक्ष्य में न केवल उनकी कहानियों की समीक्षा परीक्षा की जा सकती है, वरन समूचे नए कहानी साहित्य को परखा जा सकता है। राकेश की कहानी में आए चरित्र जीवन की हर स्थिति के भोक्ता, सहभोक्ता, अच्छे बुरे के मिले जुले रूप और परिवेश की जटिलता से प्रेरित प्रभावी और निर्भीत रहे हैं। वे जीवन से कटे हुए नहीं हैं। कभी कभी ऐसा अवश्य लगता है कि पात्र की कोई खास मनः स्थिति सहज नहीं है, आरोपित है। पात्र विशेष इस स्थिति का भोक्ता नहीं, दृष्टा भी नहीं है, तो केवल कहानीकार की आरोपित मनः स्थिति का प्रतिरूप भर है। किंतु ऐसा अपवादिक रूप से ही है। उदाहरण के लिए ग्लास टैंक की ममा का व्यक्तित्व उसके भीतर से बनाकर खड़ा किया गया नहीं लगता है, वह आरोपित प्रतीत होता है। उसकी सुभाष तीसरे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति, दयार्द्र भावना, और आसक्ति का कोई खास कारण न तो कहानी में संकेतिक है और न उसे पूरे पढ़ जाने के बाद ही स्पष्ट होता है। जो उनके पात्र जीवन की मिट्टी से बने हैं, उन्हें परिस्थितियों ने बनाया बिगाड़ा है, अतः वे अपने जिस रूप में हैं उसमें पूरे हैं। अपनी समस्त अच्छाइयों, बुराइयों और अंतर्विरोधी स्थितियों के साथ यदि कहानियों में चित्रित पात्रों का विभाजन करें तो स्पष्ट होता है कि कुछ पात्र तो अंतर्मुखी वृत्ति के हैं तथा कुछ असामाजिक व अहंग्रस्त, कुछ स्वस्थ और समर्पित चरित्र हैं तो कुछ संघर्षजीवी और प्रगतिशील, कुछ में जीजे विषय है तो कुछ में कायरता और कुछ में स्वाभिमान और विद्रोह, कुछ पात्र बेफिक्री और स्वप्नजीवी हैं तो कुछ विवश, असहाय, टूटे हुए, अकेले और भटके हुए। ऐसे पात्र अजनबियत के पुंज हैं। नोट एक, मोहन राकेश, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, पृष्ठ 33, पृष्ठ 112। एकाध पात्र ऐसे भी हैं जो पशु वृत्तियों के शिकार होने के कारण भ्रष्ट और गुंडा चरित्रों की श्रेणी में भी आते हैं। भ्रष्ट चरित्रों के दो रूप हैं, सेक्स के दीवाने और हत्या, बलात्कार व आक्रामक वृत्तियों से युक्त। ये सभी प्रकार के पात्र मध्यवर्गीय चेतना के वाहक हैं। इनका व्यक्तित्व समस्याकुल, प्रश्निल, संघर्षों के मध्य अन्वेषी और जीवन को पूरेपन में देखने वाला है। समस्याओं से जूझते, प्रश्नों से टकराते, संघर्षों के उतार चढ़ाव से हारे, थके व लुटे पिटे और यहाँ तक कि टूटते व खटते हुए ये पात्र राकेश की कहानियों की जान हैं। इनके माध्यम से भारतीय परिवेश में रोजाना बनते बिगड़ते इतिहास का मानचित्र भी प्रस्तुत हुआ है और उस परिवेश की तहों में कुलबुलाता भूगोल भी। इनके जीवन का व्याकरण किन्हीं निश्चित नियमों के आधार पर तैयार नहीं हुआ है, वह तो रोजमर्रा की जिंदगी में घटित संदर्भों के सहारे बना है। यही कारण है कि परिस्थिति के बदलते ही पात्रों की मनस्थिति तो बदली ही है, उनका आचरण व व्यवहार भी तदनुकूल होता गया है। ये पात्र जिंदगी की सर्द गर्म आहों में जीवन पाते हैं, संघर्षों से टूटते हैं तो अपने भीतर के स्व के सहारे एक नया संकल्प लेकर आगे आते हैं। यह बात अलग है कि उनका संकल्प शाम होते न होते विकल्प में परिणत हो जाता है। इसी से संभवतः डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कहा है कि राकेश की समस्या कुल कहानियों के पात्र अपने प्रारंभिक रूप में विराट मानवीय चेतना का आभास देते हैं, किंतु अंत में वे अंतर्मुखी हो जाते हैं। वे अकेलेपन और अजनबियत का बोझ ढोते रहते हैं। उनकी आस्था और सामाजिक दृष्टि भी बहुत पुष्ट नहीं है। वे भटकते अधिक हैं। उनके पात्र एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं हैं। वे असामाजिक हैं। वे अहम की परिधि से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वे प्रायः अजनबी और बेचैन रहते हैं। अंतर्मुखी वृत्ति वाले चरित्रों में भावुक और संवेदनशील चरित्रों को लिया जा सकता है। ये वे चरित्र हैं जिनके मन में आर्द्रता बाकी है, भले ही ये किसी विशेष परिस्थिति में कुछ अनपेक्षित कर बैठें, किंतु बाद में उस किए हुए की पुनर्प्राप्ति के लिए व्यग्र और व्यथाकुल दिखाई देते हैं। एक और जिंदगी का प्रकाश इसी कोटि का चरित्र है। प्रकाश बीना को या उसके बच्चे को देखने, पाने और अधिकाधिक अपने पास रखने के लिए पूरी भावुकता से काम लेता है। उसकी संवेदना मरी नहीं है, वह भीतर ही भीतर बच्चे के प्रति द्रवित है। उसका मन हुआ कि फिर नीचे जाकर बच्चे को ले आए, मगर कोई चीज उसकी पैरों को रोके रही और वह वहीं खड़ा उसे देखता रहा। शाम तक न जाने कितनी बार वह पृष्ठ 113 बालकनी पर आया और कितनी कितनी देर तक वह वहां खड़ा रहा। आखिर उससे रहा नहीं गया तो उसने नीचे जाकर कुछ चेरी खरीदी और बच्चे को देने के बहाने टूरिस्ट होटल की तरफ चल दिया। एक असामाजिक और अहम के शिकार पात्रों के रूप में जख्म के नायक को लिया जा सकता है। वह पूरी तरह अहंग्रस्त चरित्र है। उसकी अहंता यहाँ तक बढ़ी हुई है कि वह यह सहन नहीं कर सकता कि उसकी उपस्थिति में कोई किसी दूसरे के बारे में सोचे भी। यद्यपि उसमें तनाव और असमंजस का भाव है, किंतु अपने स्व के प्रति इतना केंद्रित है कि उसका अहम जगह जगह सामने आ जाता है। नायक का यह कथन कि मैं तुम लोगों की तरह नहीं जी सकता, मैं अपने वक्त का हिस्सा नहीं उसका निगहबान हूँ, मैं जीता नहीं देखता हूँ क्योंकि जीना अपने आप में घटिया चीज है। दो, उसकी अहंता मौलिकता और भीतर के बिखराव को ही व्यक्त करता है। जीनियस में भी यही रूप कुछ हल्के रूप में देखा जा सकता है। राकेश के यहाँ ऐसे पात्रों की भी कमी नहीं है जो संघर्ष जीवी हैं। ऐसे पात्रों में सुहागिने की काशी को लिया जा सकता है। यों थोड़ा बहुत संघर्ष तो प्रायः सभी पात्रों में है। वे संघर्षों से गुजरते दिखाए गए हैं, भले ही उनका बाह्य संघर्ष अंत तक पहुँचते पहुँचते अंतः संघर्ष में परिणत हो गया हो। जहाँ तक प्रगतिशील चरित्रों का प्रश्न है, वे अपने आप में स्वाभिमानी होने के साथ साथ विद्रोही भी हैं। ऐसे पात्रों में जानवर और जानवर कहानी मिस पाल कहानी का पाल, सेफ्टी पिन की मिसेस सक्सेना और मिसेस सिंह को लिया जा सकता है। कुछ पात्रों की प्रगतिशीलता विद्रोह प्रेरित है तो कुछ की आधुनिकता से पुष्ट है। सेफ्टी पिन और पांचवें माले का फ्लैट के पात्रों में जो प्रगतिशीलता है वह वैचारिक स्तर पर अधिक है। कहें कि वह आरोपित से प्रतीत होती है क्योंकि वहां यह पात्रों के भीतर से फूटी हुई नहीं है। इसके विपरीत पाल, जानवर और जानवर की प्रगतिशीलता वैचारिक भी है और स्वभावज भी। उसमें विद्रोह है, स्वाभिमान है, तभी तो वह रात वह पादरी से भिड़ जाता है। उसके द्वारा पादरी को पूछा गया प्रश्न कि रात को तो हम गरीब जानवरों को गोली मारते हैं और सुबह गिरजे में उनकी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसका कुछ मतलब निकलता है? तीन, उसके विद्रोही, स्वाभिमानी और प्रगतिशील चरित्र को ही पुष्ट करता है। नोट एक, वारिस, एक और जिंदगी, पृष्ठ 32। दो, वारिस, जख्म, पृष्ठ 233। तीन, वारिस, जानवर और जानवर, पृष्ठ 163। पृष्ठ 112। यूं इस कहानी के सभी पात्रों में पादरी के प्रति एक कुलबुलाहट मिलती है। अन्याय के चक्र में पिसते हुए कहानी के भीतर से जो आंतरिक कसमसाहट व्यक्त हुई है और पात्रों में जॉन, मड़ी, आंट सैली आदि में जो अव्यक्त आक्रोश है, वह भी पात्रों के चारित्रिक पक्ष की प्रगतिशीलता को ही पुष्ट करता है। जीजीविषा उन पात्रों में अधिक है जो जिंदगी की विडंबनाओं को स्वीकार करते हुए भी जीने की कामना लिए हुए हैं। ऐसे पात्रों में मलबे का मालिक का गनी और जख्म का कथानायक बहुत कुछ सहकर भी जीजीविषा से युक्त है। उसकी सहन शक्ति गजब की है और उसका स्नेहिल व्यक्तित्व इतना स्वस्थ और प्रभावी है कि रखा पहलवान भी उसके समक्ष अपनी सारी हरकतें भूलकर चुप रह जाता है। जख्म का कथानायक अंदर बाहर से छिलकर भी 20 वर्ष जीने की कामना लिए हुए है। वस्तुतः ये ऐसे पात्र हैं जिन्होंने जीवन की तपिश झेलकर आस्था और जीजीविषा ही हस्तगत की है। बेफिक्र और स्वप्नजीवी पात्रों में मिस्टर भाटिया को लिया जा सकता है। उनके मंसूबे ऊंचे हैं, वे ऋणग्रस्त होकर भी बेफिक्र रहते हैं। लगता है दुनिया का गर्द गुबार उन्हें छू तक नहीं सका है। किसी न किसी युक्ति से पैसे जुटाकर अपना शौक पूरा करना और भावी जीवन की रंगीनियों में खोते जाने वाला यह पात्र अपने ढंग का एक ही पात्र है। भ्रष्ट और गुंडा पात्रों में जिनकी प्रवृत्तियां पशुवत हैं, ठहरा हुआ चाकू के नत्था सिंह को लिया जा सकता है। वह खूनी और बदमाश है, कत्ल करना उसके लिए मामूली सी बात है। यह बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है, वह यहाँ से भी आगे जाता है। वह लड़कियों की दलाली करता है और वह भी ऊंचे तबके के लोगों के लिए। हक हलाल का पंडित और आखिरी सामान के मिस्टर भंडारी व उनके मित्र, रोजगार का जमशेद तथा गुनाह बेलज़त का सुंदर सिंह ऐसे ही वासना के भूखे भ्रष्ट चरित्र हैं। राकेश ने इन चरित्रों को भी ईमानदारी से अंकित किया है। एक ओर ये भ्रष्ट चरित्र हैं तो दूसरी ओर स्वस्थ और समर्पित चरित्र भी राकेश की कहानियों में मिलते हैं। नारी पात्रों में उसकी रोटी की बालो, वारिस के मास्टर जी, मलबे का मालिक का गनी और आर्द्रा की माँ स्वस्थ व समर्पित चरित्र हैं। बालों का सुच्चा सिंह के पति प्रति गहरा समर्पण है। वह बिना थके अपने पति की रोटी देने के लिए जाती है। वह पति निर्भरा है और उस पर निर्भरता में विवशता नहीं प्यार का सच्चा समर्पण है। वारिस के मास्टर जी भी शिक्षा के प्रति समर्पित हैं। वे थक हार कर और पूरी तरह टूट कर भी अपने कर्म के प्रति निष्ठावान व स्नेहिल चरित्र के रूप में चित्रित किए गए हैं। मलबे का मालिक का गनी मियाँ जीवन के प्रति आस्थावान, ईश्वर का विश्वासी एक निष्कलंक चरित्र है। उसके मुंह से भले ही भलाई के साथ साथ बद की बदी के प्रति भी क्षमा भाव है। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावी एवं आस्थावान है कि पृष्ठ 115 रखा पहलवान भी उसके सामने अपने कृत्य के लिए मन ही मन पश्चाताप करता चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त राकेश की कहानियों में सर्वाधिक संख्या इन पात्रों की है जो जीवनगत त्रासदियों को सहते सहते हताशा निराशा के बीच अकेले छूट गए हैं। इन पात्रों में ऊब, विवशता, भटकन, बेचैनी, अजनबियत और टूटन भरी पड़ी है। ये सबके बीच रहकर भी अकेले हैं, परिचितों के बीच अपरिचित व अजनबी हैं, फलतः बेचैनी और भटकन के शिकार हैं। इनमें स्त्री पुरुष दोनों ही प्रकार के पात्र हैं। ऐसे पात्रों में ग्लास टैंक की मम्मा नीरू, सुहागिने की मनोरमा, एक और जिंदगी का बीना प्रकाश युगल, मिस पाल, आखिरी सामान की मिसेस भंडारी, फौलाद का आकाश की मीरा, पांचवें माले का फ्लैट के प्रायः सभी पात्र, जानवर और जानवर के मास्टर और मैट्रेने, अपरिचित की नारी पात्र, पहचान का शिवजीत, फटा हुआ जूता का राय और सेफ्टी पिन के नारी चरित्र, खाली की तोशी, सीमाएं की उमा और उर्मिल जीवन की नीरा आदि पात्र ऐसे ही हैं। ये सब के सब जिंदगी से हारे, थके, ऊबे, निराश, अकेले और जीवन की विसंगतियों को झेलते हुए टूटते बिखरते पात्र हैं। राकेश का कलाकार इन्हीं चरित्रों के बीच रहा है। ये सब के सब राकेश की निजी अनुभूतियों या कहें कि वैयक्तिक अनुभव का प्रतिफल है। सबके सब तनाव और अंतर विरोधों में जीने वाले यथार्थ चरित्र हैं। लेखक ने इनकी प्रस्तुति और निर्मिति में अपने परिवेश को ही ग्रहण किया है। इनमें किसी की स्थिति आरोपित और कृत्रिम नहीं है। अकेला अनुभव करते हुए भी पात्र जीवन के साथ हैं। जीवन के जटिलता, ऊब और बेगानापन को राकेश ने इन पात्रों के सहारे प्रस्तुत करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। इन पात्रों के चरित्र विश्लेषण में कहीं अमिधा है, कहीं इतिवृत्त है, कहीं सांकेतिकता से और कहीं स्थितियों के संदर्भ से काम लिया गया है। संवाद, संवादों को कहानी में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यद्यपि इसकी सर्वोपरि महत्ता नाटकों में होती है, किंतु कहानी कला के संदर्भ में से भी इन्हें विस्मृत नहीं किया जा सकता। इनके प्रयोग से कहानी में आकर्षण, सजीवता और पाठकों की जिज्ञासा वृत्ति को प्रेरणा मिलती है। संवादों के सहारे कितने ही संदर्भ, कितने ही सूत्र स्वतः ही पाठक के सामने खुलते जाते हैं। यह वह तत्व है जो एक घटना या स्थिति को दूसरी को स्थिति से दूसरी को जोड़ता हुआ कथा को गति प्रदान करता है। इसके साथ ही संवादों के सहारे कहानी की मूल संवेदना और पात्रों के बीच सीधा संपर्क व आवागमन बना रहता है। वस्तुतः ये पाठक और कहानी की संवेदना व पात्रों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। सेतु जितना मजबूत और आकर्षक पृष्ठ 116 होगा, उतना ही उससे आवागमन संभव होगा और पाठक उसकी ओर आकर्षित होता रहेगा। इस प्रकार कहानी के अंतर्गत कथोपकथन की तीन दिशाएं होती हैं: कथा वस्तु का विकास, पात्रों का चरित्र विश्लेषण और कहानी में कौतूहल के सारे प्रवाह, प्रभाव और आकर्षण की सृष्टि। कथोपकथन का तारतम्य कहानी में ऐसा है जैसे नदी में लहरों की गति और उस पर थिरकता मचलता वायु का सहज संगीत। उनकी भाषा में सहजता के साथ साथ लाक्षणिकता और व्यंजकता दोनों गुणों का समावेश होना चाहिए। आधुनिक कहानी कला में संवाद आते तो हैं, किंतु अपेक्षाकृत कम और परिवर्तित परिवेश में ही उनका विधान होता है। राकेश जिस पीढ़ी के कथाकार थे, उनमें नवीन प्रतिमानों के ग्रहण की प्रवृत्ति मिलती है। इन्होंने कहानी में संवादों को स्थान दिया है। उनकी अधिकांश कहानियों के संवाद न केवल पात्रों की बातचीत का मर्म समझाने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अपितु उनमें कहानी में आए कथा सूत्रों, वर्ण्य परिवेश और मन स्थिति के निरूपण विश्लेषण की भी पूरी क्षमता रहती है। राकेश के संवादों के लिए संवाद का प्रयोग कभी नहीं किया है। वे कहीं पर आए हैं जहां उनकी आवश्यकता है, साथ ही जैसी आवश्यकता वैसे ही संवाद प्रयोग राकेश के संवाद शिल्प की विशेषता रही है। इस दृष्टि से यदि राकेश के संवादों का विवेचन करें तो स्पष्ट होता है कि वे संक्षिप्त हैं, पात्रों के चरित्र के विश्लेषण हैं और कथा को गत्वरता प्रदान करते हैं। उनमें प्रयुक्त भाषा न केवल सहज है बल्कि आवश्यकता अनुसार वह रंग रूप और अपना व्यक्तित्व तक बदलती दिखाई देती है। इतना ही नहीं, राकेश की कहानियों में अधिकांश संवाद ऐसे हैं जिनमें पात्रों, मुद्राओं व स्थितियों की व्यंजना के साथ साथ उनके कार्य व्यापारों तक का संकेत मिल जाता है। संक्षिप्त कथोपकथनों की दृष्टि से रोजगार, बस स्टैंड की एक रात और मिट्टी के रंग आदि कहानियों को लिया जा सकता है। इनमें या और भी कई कहानियों में जहां संवाद संक्षिप्त हैं, वहां उनकी प्रभाव क्षमता तो बढ़ ही गई है। लेखक ने एक भी वाक्य, यहां तक कि एक भी शब्द का अपव्यय नहीं किया है। कम से कम शब्दों के सहारे जो संवाद लिखे गए हैं, कई स्थलों पर तो वे मात्र एक दो या तीन शब्दों में ही पूरी बात कह देते हैं। स्पष्टीकरण के लिए यह संवाद देखिए जो अपनी संक्षिप्ति में अकेला है और सारे कहानीगत सूत्रों व संदर्भों का उद्घाटन भी करता चलता है। ड्राइंग रूम में कानाफूसी होने लगी। कौन है यह? उसकी बहन है। उसकी? पृष्ठ 117। हाँ, उसकी बड़ी बहन है। सगी बहन? सुना यही है कि सगी बहन है। कुछ होठों पर तो मुस्कुराहटें फैल गईं, आवाजें और धीमी हो गईं। यूं तो काशी दुबली है पर कट अच्छा है। वैसे उम्र भी ज्यादा नहीं है, 22-23 साल की होगी। एक इस संवाद में संक्षिप्ति है, घनता है, आकर्षण है और जिज्ञासा तत्व भी भरपूर है। जिस लड़की का परिचय अभी पाठकों को नहीं मिला था, वही इन तीन चार व्यक्तियों की बातचीत से मिल जाता है। साथ ही व्यक्तित्व विश्लेषण भी हो जाता है। इसी प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण राकेश की कहानियों से दिए जा सकते हैं जहां संवाद संक्षिप्त, टू द पॉइंट और स्थिति को व्यंजित करते हैं। कथा को गतिशीलता प्रदान करने वाले संवादों तथा पात्र की मन स्थिति को निरूपित करने वाले संवादों में उसकी रोटी, मिस्टर भाटिया और एक और जिंदगी व सुहागिने कहानियों के संवाद बड़े ही प्रभावी बन पड़े हैं। सुच्चा सिंह को रोटी देने के लिए बालों का समर्पण भरा आग्रह, वह मिन्नत भरा स्वर, तो दूसरी ओर सुच्चा सिंह का क्रूर व्यवहार निम्नांकित संवादों से स्पष्ट हो सकता है। इनसे कथा को गति प्राप्त होती है और चरित्रोद्घाटन भी हो चलता है। सुच्चा सिंह, उसने हाथ उठाकर रोटी अंदर पहुंचाने की चेष्टा करते हुए कहा, रोटी ले ले, हट जा। सुच्चा सिंह ने उसका हाथ झटक कर पीछे हटा दिया। सुच्चा सिंह, एक मिनट नीचे उतरकर मेरी बात सुन ले, आज एक खास वजह हो गई थी, नहीं मैं बक नहीं, हट जा यहाँ से। कहकर सुच्चा सिंह ने कंडक्टर से पूछा कि वहां का सारा सामान उतर गया है या नहीं। दो नोट, एक वारिस रोजगार पृष्ठ 46, दो पहचान उसकी रोटी पृष्ठ 166, पृष्ठ 118। राकेश की कहानियों में संवादों की जो शैलियां मिलती हैं उनमें अधिकांशतः उस नई पद्धति का प्रयोग हुआ है जिसमें पात्रों की मुद्राओं, स्थितियों की व्यंजना और साथ ही साथ कार्य व्यापारों की विवेचना भी होती चलती है। इस दृष्टि से आखिरी सामान मिस्टर भाटिया, आदमी और दीवार, सेफ्टी पिन, सौदा व आर्द्रा और जानवर को देखा परखा जा सकता है। समकालीन कहानियों में संवादगत ये विशेषताएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। आखिरी सामान कहानी के ये संवाद देखिए। उन्होंने एल्बम पर कुहनी रखे हुए धीरे धीरे आंखें मूंद ली, फिर सहसा आंखें खोलकर उन्होंने आवाज दी, चपरासी हुजूर। चपरासी मनोहर दरवाजे के पास खड़ा था। इतना धीरे वह कभी नहीं बोलता था। उसका यह स्वर उसकी अकड़ी हुई मूछों, तुर्रेदार पगड़ी और चमकती हुई बेल्ट के साथ मेल नहीं खाता था। उसकी बढ़ी हुई शिष्टता का जैसे अर्थ था कि वह आज चपरासी नहीं, कुछ और है। उसका अदब अदब नहीं, दया और हमदर्दी है। मुन्ना को थोड़ी देर के लिए नीचे ले जाओ, यहाँ गर्मी है। आदेश पाकर भी कुछ क्षण मनोहर के पांव नहीं हिले। वह दृष्टि से उन्हें देखता रहा जैसे नौकर मालिक के रिश्ते की दहलीज लांग कर एक कदम आगे आना चाहता हो, मगर संस्कारों की अकड़न बढ़ने न देती हो। एक, यहां राकेश का मंतव्य पात्रों की वार्ता प्रस्तुत करना उतना नहीं है जितना कि पात्र मिसेज भंडारी की मुख मुद्राओं और चेष्टाओं को उभारना है। कथोपकथन की यह प्रवृत्ति और शैली राकेश की दर्जनों कहानियों में देखी जा सकती है। इस संदर्भ में जानवर और जानवर कहानी में आया यह संवाद भी देखा जा सकता है जिसमें पाल व पादरी मुख मुद्रा व तत्संबंधित स्थितियां भी व्यंजित हैं। राकेश ने पाल के चेहरे की मुद्राओं और उस पर क्रोधावेश में उभरती लाल रेखाओं व चेहरे के खिंचाव को स्पष्ट कर दिया है। ऐसे कथोपकथनों का प्रयोग राकेश ने सर्वाधिक किया है जिनमें पात्रों की मुख मुद्राओं व स्थितियों की व्यंजना के साथ साथ उनके कार्य व्यापारों की व्यंजना भी होती गई है। मैं वजह जान सकता हूँ? वह कुछ भी नहीं है। पादरी की उत्तेजना के मारे बाइबल को दोनों हाथों में भींच लिया और त्योरी डालकर कहा, तुम जानते हो कि जो अच्छा भला होकर भी सुबह गिरजे में नहीं आता उसे यहां रहने का अधिकार नहीं है। नोट, एक पहचान आखिरी सामान पृष्ठ 64, पृष्ठ 119। गुस्से के मारे पाल के जबड़ों के मांस में खिंचाव आ गया था। उसने मैगजीन मेज पर रख कर हाथ जेबों में डाल लिए और बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। बड़ी खिड़की के पास जॉन नजर झुकाए बैठा और 8-10 लोग नोटिस बोर्ड और चिट्ठियों वाले रैक के पास खड़े अपने को किसी न किसी तरह उदासीन जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी पाल के साथ आंख नहीं मिलाई। पाल का गला ऐसे कांप गया जैसे वह कोई बहुत सख्त बात कहने जा रहा हो। पादरी, हम गिरजे में जो प्रार्थना करते हैं उसका कोई मतलब भी होता है? एक लकीर दूर तक खींचती चली गई। पादरी का चेहरा गुस्से से स्याह हो गया। तुम्हारे कहने का मतलब? उसके दांत भिज गए और वाक्य उससे पूरा नहीं हुआ। नोटिस बोर्ड के पास खड़े लोगों के चेहरे फक पड़ गए। एक, राकेश ने संवादों में अनेक स्थलों पर लाक्षणिक और व्यंजक शब्दावली का प्रयोग किया है। यद्यपि ऐसे संवादों की भाषा भी सरल शब्दों से निर्मित है, किंतु उसमें सांकेतिकता, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता का गुण पर्याप्त है। ऐसे संवाद सोया हुआ शहर, ग्लास टैंक, पांचवें माले का फ्लैट और फौलाद का आकाश में देखे जा सकते हैं। इन व्यंजक, लाक्षणिक और प्रतीकात्मक संवादों में स्थिति की व्यंजना, पात्र की मनोदशा और परिवेश की सारी अर्थवत्ता समाहित है। ये न केवल पात्रों के मनोगत भावों के उद्घाटक हैं, बल्कि उससे संबद्ध परिवेश का भी बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए निम्नांकित संवाद देखिए। पत्नी सुंदर मिल गई होगी, मैंने ममा से कहा, तभी ना आदमी सब नाते रिश्ते भूल जाता है। ममा पल भर अवाक सी मेरी तरफ देखती रहीं, जैसे अचानक उन्हें लगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ, सयानी बात कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे बालों को सहला दिया और कहा, नाता रिश्ता नहीं है, फिर भी मैं सोचती थी कि पत्नी उसकी सुंदर है ना? मैंने फिर पूछ लिया। ठीक से देखा नहीं, ममा अंतर्मुख सी बोली, दूर से लगा था सुंदर है। तभी शब्द पर अपनी 18 साल की परिपक्वता का इतना बोझ मैंने लाद दिया कि सीमा उस मनः स्थिति में भी मुस्कुरा उठी। ममा छिली सी रहती, अकेले में मुझसे कहती, जाने उसे क्या हो गया है, यही मनाती हूँ खुश हो, खुश रहे, उस दिन ठीक से बात कर लेता तो इतनी चिंता ना होती। नोट एक, वारिस, जानवर और जानवर, पृष्ठ 163। पृष्ठ 120, मैं सिर हिलाती और तीलियां गिनती रहती। उन दिनों आदत सी हो गई थी, जब भी ममा के पास बैठती माचिस खोल लेती और तीलियां गिनने लगती। एक, इसी प्रकार जख्म कहानी का यह संवाद देखिए। पर मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, मैंने कहा, तुम कहो तो यहीं कहीं बैठते हैं, नहीं तो कुछ देर के लिए मेरे घर चल सकते हैं। तुम्हारे घर? नियन लाइट्स के रंग उसकी आंखों में चमक कर बुझ गए। तुम्हारा घर कल से आज में कुछ और हो गया है? बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। वह पहले से थोड़ा और मेरी तरफ झुक कर बोला, तुम्हारा घर वही है ना जहां तुम कल भी गए थे अकेले, बस के फुटबोर्ड पर लटके हुए? कल तुम्हें मेरे साथ जाने से डर लगता था, आज नहीं लगता? मैं जैसा बेकार कल था वैसा ही आज भी हूं, बिल्कुल उतना ही बेकार और बदचलन। मेरे दोनों होंठ भी आपस में चिपक रहे थे। उन्हें कोशिश से अलग करके मैंने कहा, तुमने कल नहीं बताया कि तुमने यह नौकरी भी छोड़ दी? तुम्हारा ख्याल है मैं नौकरी छूटने की वजह से यह बात कर रहा हूं? वह अपनी आंखों को और पास ले आया। तुम समझते हो कि इसी वजह से कल मैं तुमसे चिपका रहना चाहता था? पर खातिर जमा करो, नौकरी न रहने पर भी मैं 10 आदमियों को खिला सकता हूं, खाता मैं कभी किसी से नहीं। उसने पास से गुजरते हुए एक 2-सीटर को हाथ के इशारे से रोका तो मैंने फिर कहा, चलो घर चलते हैं, वहीं बैठकर बात करेंगे। तुम जाओ अपने घर। उसने मेरा हाथ अपने जख्मी हाथ में लेकर हिला दिया, क्योंकि तुम्हारे लिए एक ही जगह है जहां तुम जा सकते हो, पर जहां तक मेरा सवाल है, मेरे लिए एक ही जगह नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूं। दो, ऐसे और भी अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जहां संवाद लाक्षणिक और व्यंजक बन पड़े हैं। ऐसे संवादों से मित कथनों से अमित व्यंजनाएं निकलती हैं। नोट एक, फौलाद का आकाश, ग्लास टैंक, पृष्ठ 15। दो, वारिस, जख्म कहानी, पृष्ठ 236-237। पृष्ठ 121, राकेश की कहानियों में आए संवादों की विशेषता यह भी है कि उनमें पात्रों के कथोपकथन से पहले और बाद में वक्ता की मनः स्थिति या घटना संदर्भ भी जुड़े दिखाई देते हैं। एक स्थिति का परिचय देते देते पात्र अपनी मूल बात कहता है। ऐसा करने से संवाद न केवल प्रभावी बन पड़े हैं, वरन पात्र परिस्थिति संदर्भ और परिवेश के भीतर से निकले हुए प्रतीत होते हैं। ग्लास टैंक की नीरू जब सुभाष को जाने से रोकना चाहती है तो उसके कथनों में आए शब्द सीमित बंधे हुए और नपे तुले हैं, किंतु उनसे जो व्यंजना निकलती है वह उसके मनोभाव का बिंब प्रस्तुत कर देती है। आप चले जाएंगे? उसने सिर हिलाया। एक दिन के लिए भी मुश्किल से आ पाया हूँ। वहाँ ज़रूरी काम है? बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन काम है। पहली नौकरी छोड़ दी है, दूसरी के लिए कोशिश करना है। एक दिन बाद जाकर कोशिश नहीं की जा सकती? एकाएक मुझे लगा कि मैं यह सब क्यों कह रही हूँ। डैडी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? परसों एक जगह इंटरव्यू है, उसने कहा। वह तो परसों है ना, कल तो नहीं। और मैं बाहर चली आई। उसकी आंखों में और देखने का साहस नहीं हुआ। एक, यद्यपि आज कहानी जिस स्थिति से गुजर रही है वह ऐसी है कि उसमें संवादों का प्रयोग कम से कम है। राकेश की जीनियस भी ऐसी ही एक कहानी है जिसमें संवाद नहीं के बराबर है, किंतु संवादहीन होते हुए भी कहानी में प्रवाह बराबर बना रहता है। संवादहीन कहानी होकर भी उसमें जो मन बांधने की क्षमता है वैसी अन्यत्र संभव नहीं लगती है। यो राकेश संवाद लिखने में माहिर हैं। उनके संवाद कहानीकार की कला सजगता के प्रमाण हैं। वे संदर्भानुसार संक्षिप्त विस्तृत व्यंजनापूर्ण और काव्यात्मक होते चले गए हैं। राकेश जिस तरह जीते थे, जिस तरह के मूड के रचनाकार थे और जिस परिवेश में सांस लेते थे, उसके गवाह उनके संवाद हैं। उनमें पूरा परिवेश, पूरा व्यक्ति और उसका पूरा व्यक्तित्व समाहित है।